Recording in progress.
ये कोई सवाल है तो चैट विंडो पे लिख करके पूछ ले। उन्होंने हैंड रेज किया। मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تزدنا علما. تو سورہ انعام کی ان آیات یعنی 90 سے 94 تک کے ہمارے کو مسائل پڑھنے شروع کر چکے تھے کل کی کلاس میں. تو پیج نمبر 395 معرف قرآن کی جلد نمبر 3 کا ہے. اس پر ہم تھے, ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے پچھلی امتوں سے کچھ احوال بتائے ان میں سے, یعنی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آباؤ اجداد باپ داداؤں میں سے جو ہدایت پر تھے ان کا تذکرہ کیا, ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا, اور ان کے ساتھ کچھ ان کے بھائی اور اولادوں کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے, ان انبیاء کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد حکم فرمایا کہ تم ان کی اقتدا کرو, آپ ان کی اقتدا کیجئے. تو اس میں ایک ہدایت حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس میں ایک ہدایت تو اہل عرب اور تمام امت کو یہ ہے کہ تقلید آبائی کی وہم پرستی کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ ایک وہم ہے کہ بس جو بھی پڑھا ہے نا تو اس کی اتباع کرنی ہے, چاہے کچھ بھی ہو, بس بڑے ہیں اس وجہ سے اتباع کرنی ہے. اس کا جو ہے وہ حقیقت سے تعلق نہیں ہے, یہ صحیح علم نہیں ہے, بلکہ یہ وہم ہے بس, یعنی غلط فہمی لگ گئی ہے. وہم جو ہے وہ غلط فہمی کی ایک شدید قسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ جیسے مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے نا, ایک عام آدمی کو غلط فہمی ہو گئی کہ بھئی اس کے جو ہے نا وہ ہاتھ پیر گندے ہیں, میلے ہیں. ٹھیک ہے, تو غلط فہمی ہو گئی, حالانکہ وہ دھو چکا تھا, لیکن غلط فہمی ہو گئی, اس نے دوبارہ دھو لیا جا کر کے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ہوتا ہے وہم ہو جانا, یعنی بس گندے ہیں, اب وہ دھوئے چلے جا رہے ہیں, دھوئے چلے جا رہے ہیں, آدھے گھنٹے تک دھوئے چلے جا رہے ہیں, لیکن ان کا یہ وہم دور نہیں ہو رہا کہ بھائی اب وہ دھو چکے ہیں, اب وہ گندگی دور ہو چکی ہے, لیکن نہیں, دھوئے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو باقاعدہ اب میڈیکل ڈاکٹرز نے ایک ٹرم اس کے لیے کوائن کر لی ہے جس کا نام ہے اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. انگریزی میں ہم بڑا اچھا اچھا سمجھنا, اچھا جی او سی ڈی ہے یہ, بھائی یہ تو ابھی ڈاکٹرز نے ایک 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 نام بنا لیا نا اس کا, اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک نام بنا لیا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت بہت پرانی ہے, وہم پرستی, وہم لگ گیا. یہ غلط فہمی نہیں ہے, غلط فہمی کی ایک انتہائی شکل ہے. ٹھیک ہے, وہی فرما رہے ہیں کہ یہ غلط فہمی کی ایک انتہائی شکل ہے کہ بس جو بڑا ہے, جس کے بال سفید نظر آ رہے ہیں, اس کی اقتدا بھی کرنی ہے, اس کو فالو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, زیادہ سے زیادہ اس کی بزرگی کی وجہ سے, اس کے بڑھاپے کی وجہ سے, اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا ادب کرنا ہے, اس کے ساتھ یعنی بدتمیزی نہیں کرنی ہے, اس کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے, بے شک اس کی خدمت کرنی ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ تمیز سے بات کرنی ہے, لیکن اقتدا کس کی کرنی ہے؟ اقتدا تو انبیاء کی کرنی ہے, اور جو انبیاء کے راستے پہ چلنے والے ہیں صرف ان کی کرنی ہے. ठीक है, तो दूसरी हिदायत खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं अंबिया साबिकीन का तरीक इख्तियार फरमाएं। ठीक है, ओह क्या उन्होंने सवाल कर दिया भाई, हजरत ये ओसीडी क्या शैतान की वजह से होती है? कुछ ना कुछ तो वैसे उसका नजर आता है अमल दखल इसके अंदर, ठीक है, लेकिन अल्लाह आलम, मैं कोई ओसीडी का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ ये वहम परस्ती अगर आप उसको इस तफसीर के साथ जोड़ने की कोशिश करें तो तफसीर से तो ये बात वाली बातें जो है वो शैतान के ही असर की वजह से नजर आती हैं। अगर जो है वो दूसरी वाली ओसीडी वाला जिसको कहा जाता है, तो वो भी फिर इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो फिर वो भी शैतान के असर से ही होता है। लेकिन अब जो है वो आसानी की खातिर कि भाई नहीं मेडिकल कंडीशन है, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए हैं, और ये हो गया है, वो हो गया है, उसकी वजह से ओसीडी हो गए हैं, तो अल्लाह आलम। ठीक है, अब हर चीज में नाक नहीं घुसड़नी चाहिए। बहरहाल तो आगे चलें कि यहाँ ये बात काबिले गौर है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयतों में फुरूई और जुज़वी इख्तलाफात पहले भी होते रहे हैं। फुरूई और जुज़वी यानी नॉट होल्ली, नॉट कम्प्लीटली, बल्कि पार्शियली। ठीक है, और फुरो का मतलब होता है फुरुआत, ये ब्रांचेस। ठीक है, यानी जैसे किसी दरख्त की एक तना होता है, ठीक है, और तने से फिर जो ब्रांचेस निकलती है ना, उनको फुरुआत कहा जाता है। तो वो फिर किसी एक ब्रांच को ले लिया, किसी भाई वो पूरा दरख्त तो नहीं है ना, वो तो आपने दो तीन ब्रांचेस को ले लिया या चंद ब्रांचेस को ले लिया है, पूरा दरख्त तो नहीं लिया ना, लेकिन अगर तने को पकड़ा तो तने को पकड़ना जो है ये पूरे दरख्त को पकड़ना होगा। ठीक है, लेकिन ब्रांचेस को पकड़ना ये पूरे दरख्त को पकड़ना नहीं होगा। पूरे दरख्त की बात आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयतों में इख्तिलाफात है ना, वो पूरे शरीयत का इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि वो चंद ब्रांचेस में उनकी शरीयत मुख्तलिफ है, इनकी शरीयत मुख्तलिफ है। ये जुज़वी इख्तिलाफात पहले भी होते रहे हैं, और मिल्लत इस्लाम में भी उनसे मुख्तलिफ बहुत से अहकाम नाजिल हुए हैं। यानी ईसाइयत में जो अहकाम थे, या मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में अहकाम थे, तो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ अहकाम मुख्तलिफ नाजिल हुए हैं। जैसे पहले दो नमाजें थी, अब पांच नमाजें फर्ज हो गई। ठीक है ना, तो ये फर्क हो गया ना। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अच्छा अब हजरत लिखते हैं कि फिर नबी अलैहिस्सलाम को अंबियाए साबिकीन के तरीक पर चलने और अमल करने का क्या मतलब हुआ फिर? ठीक है, कि आप उनकी इक्तदा कीजिए, तो भाई दो नमाजें उनके यहाँ थी तो आप भी दो ही नमाजें पढ़ें, इक्तदा करने का तो ये मतलब हुआ ना, हमारे नजदीक ये मतलब हुआ, हकीकत में ये मतलब नहीं होता। ठीक है, तो तरीक पर चलने और अमल करने का क्या मतलब हुआ? तो फरमाते हैं कि दूसरी आयात और रिवायात हदीस के पेश नजर इसका जवाब यह है कि यहां तमाम फरूई और जुजवी अहकाम में अंबिया साबिकीन का तरीकेकार इख्तियार करने का हुक्म नहीं है। ठीक है, कि सारे जो आमाल है ना, जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस कहलाती हैं, या एक्सटर्नल जो है वो इजहारात कहलाते हैं, जाहिरी इजहारात, यहां पर हर उसकी इत्तबा करने का हुक्म नहीं है, बल्कि किस चीज की इत्तबा करने का हुक्म है? उसूल दीन, उसूल। जैसे दरख्त में जो तना होता है उसको दरख्त का उसूल भी कहा जाता है, या असल, उर्दू का लफ्ज असल तो जानते हैं ना सब। ठीक है, तो जो असल है ना उसकी इत्तबा करने का हुक्म है, जो क्या है? तौहीद। तौहीद क्या है भाई? तौहीद क्या चीज होती है? तो तौहीद पता है ना भाई, कल बात हुई थी ना, पता भी है, जो आप सारी दुनिया के बारे में फिक्रमंद हुए चले जा रहे हैं, तो अपने दीन का भी कुछ पता है क्या होता है ये? या दीन हमारा जो दीन है वो हम खुद भी हैं अपने दीन के ऊपर, जो हमें पूरी दुनिया की फिक्र पड़ी हुई है कि फलाना दीन पर है, फलाना दीन पर है कि नहीं है, और अभी क्या हो गया, और अभी क्या हो गया। भाई दावत तो तबलीग की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो इस यानी दावत तबलीग की फिक्र और खैर ख्वाही की फिक्र, तो ये तो बहुत अच्छी फिक्र है, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, ये तो बहुत जरूरी होने की चीज है। नहीं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ये जो मीडिया पे लगे हुए हैं, इधर की खबरें उधर की खबरें, वो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसे ने कर ये कर दिया, इसने वो कर दिया, और जो मीडिया दिखा रहा है वही हक है, वही सच है, और वही वैसा ही है जैसा वो दिखा रहा है, इस इसके चक्कर में फंसे रहने की बजाय अपने दीन की फिक्र तो करो ना भाई, कि तुम्हें पता भी है तौहीद क्या चीज होती है, कल तो बात हुई थी ना, ईमान क्या चीज होती है, अकीदा क्या चीज होती है, और जो है वो इल्म सही इल्म है क्या, अजम्पशंस इज नॉट सही इल्म। आज नोट्स भी अल्लाह भला करे जो लोग बनाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी थोड़ा ठीक ठाक करके साजिद ने भेज दिया, कल के क्लास के सारे नोट्स भेज दिए। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप भी कम से कम एक दफा उसको पढ़ लें, ठीक है, काफी मेहनत से नोट्स बनाए जाते हैं, कम से कम उसको पढ़ ही लिया करें, ठीक है। तो तौहीद, तौहीद क्या चीज होती है भाई जी, क्या होता है भैया तौहीद? यानी माशाल्लाह क्लास में तवज्जो से बात सुनी, याद रखी, आगे फिर उसका जवाब भी देने के अल्लाह ताला ने काबिल बनाया। तो यहाँ हम पढ़ते हैं जो सही जवाब आ गया मर्दों में, तो ख्वातीन की तरफ भी देख लेते हैं कि अल्लाह को अपनी जात व सिफात में यकता मानना, अल्लाह को अपनी जात और सिफात में यकता मानना, बेशक ये तौहीद है, ठीक है। और यही तौहीद हम बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, और यही है भी तौहीद, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमने किताब में पढ़ दिया और हमने इसको रट लिया, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें रटा हुआ है ये, ठीक है। लेकिन जिंदगी में इसका क्या ताल्लुक है, जिंदगी से इसका क्या ताल्लुक है, हमारे अहवाल से इसका क्या ताल्लुक है, हमारी जो है वो आमाल से क्या ताल्लुक है, और हमारी सोच से इसका क्या ताल्लुक है, तो ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। और ये अनफॉर्चुनेटली आजकल का मुसलमान जो है वो बचपन में रटी हुई चीज वो पचपन में भी जाकर के उसको समझ में नहीं आ रही होती कि इसका करना क्या है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा ना इसकी समझ के अंदर। तो इन्होंने लिखा जी कि कुरान की सिफात पर कामिल ईमान, कुरान की सिफात पर कामिल ईमान, ये कुछ भी बना लो अपने और लिख दो बस, ये तो फिर ऐसे ही हो गया, कुरान की सिफात पर कामिल ईमान, जस्ट कम अप विद समथिंग एंड जस्ट राइट राइट। ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड बट अल्लाह, कलमाए तौहीद, कलमाए तौहीद है वो बेशक, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ठीक है। बेशक अब ये नहीं कह सकते कि ये तौहीद नहीं है, लेकिन बात समझ में आने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा ना, ताकि हमारी जिंदगी में भी तो ये तौहीद आ जाए, ठीक है। तो एक इसका बहुत आसान तरीका जो है ना वो ये है कि बहुत सारी चीजें जो कि हमें क्लियरली समझ में नहीं आ रही होती है ना, और उनको हम एप्लीकेबल नहीं बना पा रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, तो उनको समझने के लिए हम उनके जो मुतजाद है ना, हम उसको देखें, मुतजाद उसका जो ऑपोजिट है उसको देखें। तो एक उसूल है, इंसानी नफसियाती उसूल भी इसको कह सकते हैं, इंसान के नफसियात इस तरह से काम करती हैं, तो वो फिर वो उसूल बन गया कि अल अशियाउ तो उरफु बे अवदादिहा, कि बहुत सारी चीजें जो है ना, अल अशिया यानी चीजें अपने जिद से समझ में आती हैं, चीजें अपनी जिद से समझ में आती हैं। क्या मतलब कि जो चीज जरा अनक्लियर हो रही हो ना, तो आप उसकी ऑपोजिट को देखें, वो ऑपोजिट जो है ना वो क्लियर होगी, ऑपोजिट क्लियर होगी, जब ऑपोजिट जो है वो क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई, तो फिर जो उसका ऑपोजिट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तौहीद जो है वो उसकी ऑपोजिट क्या है, उसकी ऑपोजिट जो है ना वो शिर्क है, ठीक है। अच्छा ये ऑपोजिट वाला जो मसला है, तो ये भी आप ज़ाहिर ये भी समझ में आना जरा मुश्किल काम है, तो इस वजह से इसकी एक मिसाल सादा सी जो है वो यही दी जाती है कि दिन, ठीक है भाई, दिन क्या चीज है ना, दिन क्या मतलब, कहते हैं ना जिसमें रोशनी हो, तो भाई तो रोशनी तो होती ही है, रोशनी तो है ही, तो अब दिन का क्या मतलब, वो जिसमें आप काम करते हैं, वो जिसमें आप काम करते हैं वो रोशनी, वो दिन है, तो भी काम तो रात को, काम तो किसी भी वक्त कर सकता है इंसान, ठीक है। और बहुत सारे इस तरह के आप तारीफ दे सकते हैं कि भाई दिन क्या चीज होती है, तो आमतौर पर ना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दिन को बाकायदा फलसफियाना तरीके से डिस्क्राइब करना, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसको समझाने के लिए आसान रास्ता ये है कि आप रात को समझा दें, रात क्या चीज होती है, दिन का ऑपोजिट, तो तो रात वो होती है कि जिसके अंदर जो है ना वो सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो बंद हो जाते हैं। आजकल तो बंद नहीं होते ना, इस वजह से हमें रात कभी नहीं पता कि क्या चीज होती है ये, क्योंकि लाइट ही बंद नहीं होती। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली लाइट का, रात का क्या डेफिनेशन है? लाइट बंद हो जाए यानी सूरज जो कि सोर्स ऑफ लाइट था वो बंद हो जाए, ठीक है, यानी वो अब नजर आना खत्म हो जाए, छुप जाए, तो अंधेरा हो जाता है, उसको रात कहते हैं। जब अंधेरा नहीं होता ना उसको जो है वो दिन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक आम सी मिसाल दी जाती है अल अशिया तौर को भी अज़दादिहा के उसूल को समझाने के लिए। तो इसी तरह से तौहीद भी जो है ना, ये भी एक ऐसी चीज है कि जो कि है तो दिन की तरह है, तो ये दिन की तरह, लेकिन समझ में नहीं आती कि ये करना क्या है इसका। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑपोजिट जो है ना वो शिर्क। शिर्क का मतलब क्या है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कह रहे हो, बस उसके अंदर जो है ना वो आप क्या हो, आजकल के एतबार से क्या हो, आजकल के एतबार से इसको समझाना और भी आसान हो गया कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, डिस्ट्रैक्टेड मुंतशिर हो, ठीक है ना, आप मुंतशिर हो कि आपकी एक तरफ फोकस ना हो, आपका फोकस एक तरफ ना हो, बल्कि आपके दिमाग में जो है ना वो खिचड़ी पक रही हो हर वक्त, बहुत सारी चीजें चल रही हो आपके दिमाग में, यू आर नेवर फोकस्ड, एक ख्याल के ऊपर आप फोकस नहीं है, एक जहत में आप फोकस नहीं है, एक डायरेक्शन में आप नहीं सोच रहे, बल्कि आप मल्टीपल डायरेक्शन में एक साथ जो है ना वो आपका दिमाग चले चले जा रहा है। ठीक है, तो शिर्क जो है ना वो क्या है, डिफोकस्ड हो, डिफोकस्ड हो, ठीक है। और तौहीद क्या है, तौहीद जो है वो है फोकस्ड, फोकस्ड बिल्कुल यक सू, यकसुई समझते हैं ना, ये कहां से निकला, ये यक से निकला, यक यक मीन्स एक, एक सू, एक डायरेक्शन बस। ठीक है, हर चीज में यकसू, हर चीज में, हर फिक्र में यकसू, हर सोच में यकसू, हर जो है वो ख्याल में यकसू, हर जो है वो बात में यकसू, हर काम में यकसू, किस तरफ यकसू, कौन सा यकसू, किसी भी तरफ यकसू नहीं, अल्लाह की तरफ, एक अल्लाह की तरफ हर काम का फोकस, हर सोच का फोकस, हर कॉल का फोकस, हर अमल का फोकस एक अल्लाह की तरफ होना। ठीक है, ये है डिस्ट्रैक्शन की जिद, शिर्क इज डिस्ट्रैक्शन और तौहीद इज बीइंग फोकस्ड टुवर्ड्स अल्लाह। ठीक है, तो ये उसूल दीन है, दीन की असल है। ठीक है, तो यही ला इलाहा इल्लल्लाह का भी यही मतलब है, ठीक है ना, कि जो भी आप कर रहे हैं ना, हत्ता कि कल बड़े मजे की बात हुई, हमारे एक माशाल्लाह पीएचडी डॉक्टर साहब हैं, वो बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो रात को फिर तरावी के बाद जो है वो ऑनलाइन क्लास करते हैं अपने ही बेटों की, तो हमारे जो कुछ साथी हैं उनके बेटे उनसे फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो रात को वो तरावी खत्म करने के बाद वो ना फिजिक्स की क्लास करते हैं, तो कल भी उन्होंने मैसेज भेजा कि अभी 10:45 पे फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक है, तो उस पर जो है ना वो एक दूसरे साथी का मैसेज आया कि आज तो ताक रात है, तो आज की क्लास जो है ना वो छुट्टी कर दें उसकी, और दूसरी जो रात है ना उसमें डबल क्लास कर लें। ठीक है, दूसरी दूसरी रात को आप डबल क्लास कर लें, ताक रात में जो है ना वो आप फिजिक्स की क्लास की छुट्टी कर दें। तो उस पर उन्होंने बड़ा मजे का जवाब दिया, बड़ा सही जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि फिजिक्स की क्लास को इबादत समझ के ले लें। क्या जवाब दिया, कि फिजिक्स की क्लास है ना इसको इबादत समझ के ले लें। क्या मतलब इबादत समझ के ले लें, है ना, हो सकता है उन्होंने सोचा भी या नहीं सोचा, अल्लाह आलम, लेकिन बात उन्होंने बड़े मजे की करी, बड़ी जबरदस्त करी कि भाई फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं ना, इसमें भी अल्लाह को राजी करने की और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने की ही नीयत रखें जो फिजिक्स की क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें भी अल्लाह ही की नीयत रखें। ठीक है, हम फिजिक्स फॉर द सेक ऑफ फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम फिजिक्स फॉर द सेक ऑफ दुनिया नहीं पढ़ रहे, हम फिजिक्स फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं पढ़ रहे कि भाई दुनिया के अंदर कुछ ज्यादा कमा लेंगे और ज्यादा मजे आ जाएंगे, दुनिया के मजे और लूट लेंगे, बल्कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स का इल्म आएगा तो इससे हम अल्लाह की के दीन की मदद करेंगे, अल्लाह ताला के दीन को अपनी जिंदगी में भी और दूसरों की जिंदगी में भी लाने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसको कहते हैं तौहीद। जो भी काम कर रहा है बंदा, चाहे इबादत कर रहा है, चाहे मुसल्ले की इबादत कर रहा है, चाहे जो है वो कोई दुनियावी उलूम पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, उसकी नीयत अल्लाह की तरफ, उसका ध्यान अल्लाह की तरफ, ठीक है ना। ये तौहीद है, और ये दीन की ऐसी असल है कि अगर आप इसको दीन में से निकाल दें तो आप कुछ भी कर रहे हो, बस वो दीन जो है ना वो घटिया किस्म का दीन है, घटिया, क्योंकि असल आपने निकाल दी। जैसे आप दरख्त जो है ना, दरख्त उसमें से तना निकाल दें और उसकी ब्रांचेस के ओक्स कहने से ये दरख्त है, ये दरख्त है, बहुत अच्छा दरख्त है, कितना प्यारा दरख्त है, कितना जबरदस्त दरख्त है, कितना फायदेमंद दरख्त है, उस दरख्त का तना ही कोई नहीं है, राइट। तना तो आपने काट के अलग कर दिया, अब जो है वो ब्रांचेस रह गई, लीव्स रह गए, फूल बूटियां रह गई, और जो है वो और पता नहीं क्या क्या रह गया दरख्त का। ये दरख्त पर दरख्त तो ना हुआ ना। तो जिस दीन के अंदर से अल्लाह फोकस निकल जाए, अब जो है वो उसमें नमाजें भी पढ़े चले जा रहे हैं, उसमें उम्रे भी करे चले जा रहे हैं, हज भी करे चले जा रहे हैं, जकात भी दिए चले जा रहे हैं, रोजी भी रखे चले जा रहे हैं, और भी जो है वो बहुत सारे फिकने भी करे चले जा रहे हैं दुनिया में, दीन कायम करने की और दीन को ये होने की और वो होने की, लेकिन अल्लाह की तरफ फोकस नहीं, ठीक है। बल्कि फोकस किधर है, फोकस कहीं कहीं और है, ठीक है, अपने नफ्स की तरफ फोकस, अपने नफ्स को जो है वो फिट कर दिया अल्लाह की जगह पे, राइट। जहां पे अल्लाह का फोकस होना था वहां से अल्लाह को हटाया, नफ्स को वहां पे रिप्लेस कर दिया, फिक्स कर दिया उस जगह पे अपने नफ्स को, अब अपने नफ्स की खातिर जो है वो करे चले जा रहे हैं जो भी करना है। तो ये नहीं है, ये दीन नहीं है, ये अल्लाह का दीन नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ दीन है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, है ना, कि इससे क्या पता है, तुम्हारा तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। क्या मतलब, मतलब ये हुआ कि बस लफ्ज दीन का मतलब जरूरी नहीं है कि इस्लाम ही हो इसका मतलब, कि जहां दीन का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है इस्लाम है, नहीं, लोगों के अपने दीन भी होते हैं, अपना दीन बना लिया तो वो उनका दीन कहलाएगा, वो इस्लाम नहीं कहलाएगा। दीन इस्लाम तो भाई अल्लाह का दीन है जो रसूलुल्लाह के वास्ते से हम तक पहुंचा है, हमारी अकल के वास्ते से जो दीन पहुंचा है ना, वो अल्लाह का दीन नहीं है जो हमने अपनी तरफ से बना लिया कुछ। तो तौहीद ये उसूल दीन है। फिर रिसालत, ठीक है, कि रिसालत क्या, कि भाई अल्लाह ताला ने बंदों के ऊपर डायरेक्टली जो है वो ना अकायद खोले और ना जो है वो आमाल का तरीका खोला, बल्कि रसूलों के वास्ते से ये इल्म अता फरमाया। डायरेक्ट अल्लाह ताला ने सिर्फ एक चीज इंसानों को अता फरमाई, वो क्या है, एक फितरत है कि मेरा कोई एक खालिक है, कोई एक राज़िक है, ये अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में डाल दिया, ठीक है। ये रसूलों पे नहीं छोड़ा कि रसूल आके बताएंगे कि हाँ भाई वो एक है और एक से ज्यादा नहीं। ये जो तौहीद है ना, तौहीद, मजे की बात ये कि रिसालत का तौहीद से क्या ताल्लुक है, कि तौहीद जो है ये अल्लाह ताला ने फितरत में डाल के भेजा है हर इंसान को, इसके लिए रिसालत की जरूरत नहीं है। अब कुफर क्या होता है, कुफर होता है कि ये जो तौहीद फितरत में अल्लाह ने गूंद के भेजी है, इसको छुपा देना, इसको दबा देना। रसूल आके क्या करते हैं, रसूल आके सिर्फ ये कहते हैं कि तुम इसको अनकवर करो, ये जो तुमने इसको कवर कर दिया ना अपनी फितरत को, इसको अनकवर करो, राइट, इसको रीडिस्कवर करो, जिसको तुमने छुपा दिया है अपने नफसानी ख्वाहिशात के अंदर, ठीक है। ये काम जो है ये रसूल के अलावा जो है वो मतलब ये तौहीद वाला काम तो कर सकता है, लेकिन बाकी काम जो है ना, कि अल्लाह ताला को राजी करने के लिए क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं, किन में अल्लाह की रजा है, ये हम अपनी अकल से फिगर आउट नहीं कर सकते, ठीक है, ये रसूल ही ने बताना है। और रसूल की फिर बात बात में और भी बहुत सारी तफसीलात आ जाएंगे, भाई रसूल जो है वो इल्म के लिए मुअल्लिम बना के भेजा है, रसूल को अल्लाह ताला ने अपना नायब बना के बेशक भेजा है, लेकिन रसूल को खुदा बना के नहीं भेजा है, रसूल को यानी रिसालत पर ईमान जो है, एक तो ये है ना कि भाई रसूल जो है वो इल्म के लिए भेजा है, और ये भी तो जरूरी है ना जानना कि रसूल को किस काम के लिए नहीं भेजा है अल्लाह ने, एक तो होता है किस काम के लिए भेजा है, ये जानना भी जरूरी है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि किस काम के लिए नहीं भेजा है रसूल को अल्लाह ताला ने। किस काम के लिए नहीं भेजा है? अल्लाह बनने के लिए नहीं भेजा है रसूल को, खुदा बनने के लिए नहीं भेजा है रसूल को। इसलिए नहीं भेजा है कि लोग उसको खुदा बना लें या वो खुद अपने आप को खुदा के तौर पर लोगों के सामने पेश करें, नहीं। ठीक है, तो रिसालत पर ईमान, क्या हमें पता है ये रिसालत का मतलब क्या होता है? ठीक है, अच्छा, उन्होंने सवाल किया था मर्दों में कि क्या ये वकूफ कल्बी की भी तफसील होगी कि हर वक्त अल्लाह का इस्तेजार रहे। हाँ, वकूफ कल्बी भी के हाथ काम काज में मसरूफ लेकिन दिल अल्लाह की याद में मसरूफ का मतलब यही कि अल्लाह की तरफ ध्यान हर वक्त बना रहे। ठीक है, तो ये तौहीद भी यही है। अच्छा, लेकिन वकूफ कल्बी का लफ्ज जो है ना वो फिर इस्तेमाल किया जाता है कि अल्लाह की नाफरमानी से हर वक्त जो है वो बचता रहे, और तौहीद जो है इट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट। ठीक है, तो बहरहाल बाकी उसकी आ जाती है, इसमें और भी तफसील है। तौहीद रिसालत आखिरत में, बल्कि उसूल दीन तौहीद रिसालत आखिरत में उनका तरीक इख्तियार करना मकसूद है, कि यानी जैसे रसूल होते थे ना, यानी पिछले अंबिया जो थे वो हर वक्त अल्लाह का ध्यान रखने वाले, उसी तरीके से हम भी हर वक्त अल्लाह का ध्यान रखने वाले बन जाए। रिसालत के उन्होंने रसूलों को जैसे मुकाम पे रखा, जैसा ड्यू था उनका मुकाम, वैसा ही हम भी रसूल को मुकाम देने वाले बन जाए। बल्कि यहाँ पर तो नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि आप भी वैसे ही रिसालत को मुकाम देने वाले बने जैसे कि पिछले अंबिया जो है वो रिसालत को मुकाम देने वाले बने थे, और आखिरत का भी यही मामला। पहली उम्मत में जो दो नमाज फर्ज थी वो कौन सी थी? जी, हमने तो यही सुना है, पढ़ा है, बल्कि देखा भी है कि फजर की और मगरिब की, मगरिब के बाद वाली। ठीक है, तो पढ़ा और सुना तो आपने भी होगा, देखा किधर? हमने वो सिनोगॉग के बाहर देखा था। सिनोगॉग जो होता है ना, वो यहूदियों का इबादत खाना होता है, तो वहां पे उन्होंने नमाज की टाइमिंग्स लिख के लगाई हुई थी। तो वो अमेरिका में था एक सिनोगॉग, तो वहां पे गुजरते हुए नजर पड़ी, तो हमने कहा यार देखो भाई, जो अलहमदुल्ला किताब में पढ़ा था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर दो नमाजें थी, तो देखो इन्होंने दो नमाजों के ही औकात रखे हुए हैं, यानी वो अपने वर्शिप के औकात की तरह से उन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो बहरहाल, तो फरमाए के उनको, आप सच उनको भी यही हुक्म हुआ, तो जो किसी पैगंबर की शरीयत में अदल बदल नहीं। ठीक है ना, ये तीन जो क्या है, ये तीन ये आमाल तो नहीं है ना, कि यानी जिस तरह से एक नमाज है, रोजा है, हज है, जकात है, ये तो फिक्रें हैं, ये तो जहन की सोचें हैं। ठीक है ना, आखरत की तरफ सोच, अल्लाह की तरफ सोच, रिसालत की तरफ के बारे में सोच। ठीक है ना, तो ये तब्दील नहीं हुई, ये किसी पैगंबर की शरीयत में अदल बदल नहीं हुई है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का यही एक अकीदा और तरीका रहा है। भाई ये तो कोई फिजिकल तरीके तो है ही नहीं, ये तो अकीदा तो समझ में आता है लेकिन फिजिकल तरीका तो ये नहीं है, ये तो जहन की एक सोच है। नहीं, जहन की सोच में भी तरीक होता है, जहन की सोच भी एक रास्ते पर होती है। ठीक है, और अगर वो एक रास्ते पर नहीं होती, किसी दूसरे रास्ते पर होती है। क्या मतलब? कि ये जो रास्ते का कॉन्सेप्ट है जिसको अरबी जुबान में तरीक कहते हैं, ये सिर्फ पैर से चलने वाले रास्ते को नहीं कहते, बल्कि जहन से सोचने वाले रास्ते को भी तरीक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि तौहीद, रिसालत और आखिरत, इनका ताल्लुक जहन की सोच के साथ। ठीक है, तो सोच ज्यादा अहम हुई, जो कि बिल्कुल तब्दील नहीं होती, वो चीज ज्यादा अहम होती है ना जो कभी भी तब्दील नहीं होती, और जो चीज कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो उसकी अहमियत जो है वो फिर कम दर्जे की होती है उस चीज के मुकाबले में जो कभी भी तब्दील नहीं होती। ठीक है ना, अल्लाह ताला कभी भी तब्दील नहीं होते, यहाँ पर वो नहीं है कि अल्लाह ताला नाराज नहीं होते, अल्लाह ताला जो है वो खुश नहीं होते, यहाँ वो वाली बात नहीं हो रही, मॉडर्न मॉडर्न एथियस एंड ओल्ड एथियस वाली बात नहीं हो रही, बल्कि कि अल्लाह ताला ये तो नहीं कि बढ़ गए, कम हो गए, नऊज़ बिल्लाह, घट गए, एक अल्लाह चला गया, दूसरा अल्लाह आ गया, ये सब तो नहीं होता ना अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। जबकि रसूल, वो एक रसूल आए चले गए दुनिया से, पर्दा फरमा गए, दूसरे रसूल आए चले गए दुनिया से, पर्दा फरमा गए, तीसरे रसूल आए, चौथे रसूल आए, 1,24,000 आए, फिर आखिरी आए, वो भी दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए। तो अल्लाह ज्यादा बड़ा है कि रसूल ज्यादा बड़ा है? जो कभी भी नहीं पर्दा फरमाता, कभी भी नहीं जो है वो फिना नहीं होता, वो ज्यादा बड़ा है कि जो दुनिया से भी फिना हो गए? ठीक है, वो ज्यादा बड़ा है। अरे अल्लाह ज्यादा बड़ा है रसूलों से। तो उसी तरीके से सोच की बात आती है कि भाई सोच जो है ना, ये जो कि अल्लाह ताला ने कांस्टेंट रखी है, वो ज्यादा बड़ी है कि आमाल ज्यादा बड़े हैं जो कि तब्दील होते रहे? ठीक है, आमाल अहम जरूर है क्योंकि वो भी अल्लाह के हुक्म ही की वजह से है, लेकिन सोच भी तो अल्लाह के हुक्म की वजह से है और वो कभी ना तब्दील होने वाली चीज। लेकिन हमारा हमारा फोकस जो है वो सोच की तरफ होता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा होता है तो अमाल की तरफ होता है। क्यों भाई? तो बाकी फरोई अहकाम जिनमें कोई तब्दीली नहीं की गई, उनमें भी तरीक़ेकार मुश्तरक रहा, और जिनमें हालात के बदलने की वजह से बतकाजाए वक्त व हिकमत कोई दूसरा हुक्म दिया गया तो उसकी तामील की गई। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने सोचे नहीं बदली हैं लेकिन अमाल जो है ना वो बदले हैं। अच्छा, अब अमाल क्यों बदले हैं? उसकी हिकमत बताई, उसकी हिकमत क्या बताई कि भाई हालात बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। क्या मतलब? खुद से बदल जाते हैं हालात? नहीं, बल्कि अल्लाह ने ये निजाम बनाया कि हालात को अल्लाह ताला इंसानों के बदलते हैं, वरना अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था कि जिन हालात में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, 21वीं सदी ईस्वी में भी वही हालात रहते जिन हालात में आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा था। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम था क्या? ये कोई मुश्किल काम नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के जो हालात थे वही हालात जो है वो 1400 साल गुजरने के बाद भी रहते। क्या मुश्किल काम था अल्लाह ताला के लिए? कोई मुश्किल काम नहीं था। अल्लाह ताला बना सकते थे वही हालात, या तो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में टेक्नोलॉजी वाला जमाना बना देते, वो भी बहुत आसान काम था अल्लाह के लिए, या हमारे जमाने में मिट्टी के घरों वाला निजाम बना देते, वो भी अल्लाह के लिए बहुत आसान था। ठीक है ना, अल्लाह की कुदरत तो इससे भी ज्यादा है। लेकिन अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया, ये डिसाइड किया कि नहीं, इंसानों के हालात में बदलूंगा। ठीक है ना, पहले ऐसे मामलात रहेंगे, फिर ऐसे मामलात रहेंगे, ऐसे मामलात रहेंगे, तो अल्लाह ताला ने फिर हालात भी बदले और हालात के मुताबिक जो है वो अहकामात भी बदले। ठीक है, लेकिन नबी, आखिरी नबी के बाद वक्त जो फराइज अल्लाह ताला ने कर दिए, अब वो मुकम्मल हो गए, वो नहीं बदलने वाला। ठीक है, लेकिन हालात तो फिर भी बदल रहे हैं। फराइज नहीं बदलेंगे, जो फर्ज अहकामात हैं वो नहीं बदलेंगे, लेकिन बाकी हालात तो बदलेंगे। तो फिर क्या मतलब कि जो नफली अहकाम होते हैं, जो नफली इबादतें होती हैं, जो मुस्तहब मामलात होते हैं, क्योंकि फराइज के बाद दूसरी चीज क्या रह जाती है? मुस्तहबात रह जाती। बस दो ही चीजें, ये बाकी सुन्नत मौकदा और सुन्नत गैर मौकदा, भाई ये सब मुस्तहब चीजें हैं। ठीक है ना, किसी का इस्तेहबाब ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, किसी का इस्तेहबाब कम सिग्निफिकेंट हो जाता है, लेकिन है सारे के सारे मुस्तहब, सारे के सारे नफली अमाल हैं। ठीक है ना, वो तो नबी अलैहिस्सलाम के मुदावमत की वजह से किसी की सिग्निफिकेंस ज्यादा हो गई, किसी की सिग्निफिकेंस कम हो गई, लेकिन वो भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, वो भी डिपेंड करता है हालात के ऊपर। ठीक है, लेकिन फराइज जो है ना, ये अल्लाह ताला ने कॉन्स्टेंट कर दिए हैं। तो भाई हालात बदलते हैं तो अल्लाह ताला के फिर जो रजा के जो वो होता है ना, जिससे कि अल्लाह ताला की रजा मिलती है, एक्स्ट्रा एडिशनल रजा मिलती है, जिनको नफिल कहा जाता है, नफिल से अल्लाह ताला की एडिशनल रजा मिलती है, ये फिर हालात पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए अपने पास कि नफिल जो है ना फिर ये हालात पर डिपेंड करते। ठीक है, अच्छा, वैसे तो फराइज भी किसी दर्जे में हालात पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम उनकी सिग्निफिकेंस होती है, वो बिल्कुल भी, यानी वो कैंसिल आउट नहीं हो जाते फराइज। हाँ ठीक है, थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाती है कि भाई आप खड़े होने की बजाय बैठ के फर्ज पढ़ लें, और बैठने के बजाय जो है वो अगर आपका हालत मुश्किल है तो आप जो लेट के फर्ज पढ़ लें, लेकिन नमाज साकत नहीं होती। ठीक है, सोच का तो असली तालीमी निजाम ने रुख ही बदल दिया है, डेफिनेशंस ही में डेफिनेशंस ही तब्दील कर दिए जी। सारा मसला असल में यही है, हम रो रहे हैं कि जी अकायद की अहमियत ही नहीं रही, हम जो है वो तालीमी निजाम को रोते ही नहीं है। हम अकायद को रो रहे हैं तो कोई किसी और चीज को रो रहा है, तो किसी और चीज को रो रहा है, राइट। लेकिन एक तालीमी निजाम जो है ना, उसको हमने रोने से मुस्तस्ना कर दिया कि नहीं इसके ऊपर रोने की कोई जरूरत नहीं, ये तो ठीक है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो है ना वो मसहफी हम तो समझे तो होगा कोई जख्म, हम बस यही समझ रहे हैं तालीमी निजाम के बारे में कि होगा कोई एक दो मसले होंगे इसके साथ, वो तो हम वैसे ठीक कर लेते हैं। जो असल जड़ है, जिसके जड़ तब्दील कर दिए, यानी देखें एक होता है ना तना तब्दील कर दिया दरख्त का, तो फिर वो दरख्त दरख्त तो नहीं रहता। एक होता है कि तने से भी नीचे जा करके जड़ ही तब्दील कर दी, ठीक है, रूट्स ही तब्दील कर दी, बीज ही तब्दील कर दिया। और फिर मजे की बात ये कि बीज तो तब्दील कर दिया लेकिन नाम उसका वही रख दिया, राइट। यानी आपने हम पिछले दिनों हमने अपना जो छोटा सा गार्डन बनाया है तो उसके अंदर जो है ना वो भिंडी के बीज लगाए और जो है वो सनफ्लावर के बीज लगाए, पता नहीं वो निकल को तो नहीं दे रहे अभी तक, लेकिन बहरहाल बीज लगाए। अब जो है ना वो बीज था वो भिंडी का और दूसरा था सनफ्लावर का बीज, ठीक है। तो अब जो है वो अगर इमेजिन करें कि शायद सनफ्लावर का बीज निकल आए और भिंडी का बीज ना निकले, लेकिन हम जो है ना, अच्छा लेकिन मिसाल के तौर पर ये कि बेटे साहब को भिंडी के बीज की बड़ी वो थी कि नहीं भिंडी का बीज निकलना चाहिए था, भिंडी का पौधा निकलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन भिंडी का तो पौधा निकला नहीं, सनफ्लावर का पौधा निकल गया। तो हम अगर कहें कि चलो यार बेटे को खुश करने के लिए ना हम सनफ्लावर के पौधे का नाम भिंडी रख देते हैं, राइट, क्या ख्याल है, बेटा खुश हो जाएगा, ठीक है ना। सनफ्लावर के पौधे का नाम हम भिंडी रख देते हैं, बेटा भिंडी निकल आई है, हालांकि वो है सनफ्लावर, मुझे पता भी है कि वो सनफ्लावर है, बच्चे को खुश करने के लिए उसको भिंडी कहना शुरू कर दिया। यही मामला हमारा भी हुआ है। काफिर ने, कॉलोनियल सिस्टम ने, दज्जाल ही ने, दज्जाल को दज्जाल कहते क्यों है, इसीलिए तो कहते हैं कि उसने सनफ्लावर का नाम भिंडी रख दिया है, राइट, और खुश कर दिया है हमें कि भिंडी निकल आई, सही है, इसी वजह से उसको दज्जाल कहते हैं। यार दज्जाल का मतलब ही नहीं समझ में आता हमें, दज्जाल का मतलब है क्या। तो ये तालीमी निजाम को रोएं भाई, कम अज कम रोएं, इसका रोना रोएं, लोगों के सामने रोएं, अपने सामने रोएं, रातों को उठकर रोएं, फिर शायद जो है वो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, हजारों साल रोएं, मैं फिजिकल हजारों साल की बात नहीं कर रहा, लेकिन रोएं यार, रोएं इसके ऊपर, तालीमी निजाम के ऊपर, शायद जो है ना अल्लाह ताला कोई दीदावर पैदा कर दे जो कि इस तालीमी निजाम को फिर बदलने का वाकई सबब बन जाए, अभी तो कोई आसान नजर नहीं आ रहा है इसके। अच्छा तो कहते हैं कि यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिए वही कोई खास हिदायत ना आती थी तो आप फरूई मामलात में भी पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीक़ेकार पर चलते थे। अच्छा इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसियत के साथ एक ऐसे ऐलान का हुक्म दिया गया जिसका ऐलान तमाम अंबिया साबिकीन भी करते चले आए हैं, वो ये कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, यानी मैं तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए जो हिदायत तुम्हें दे रहा हूं उस पर तुमसे कोई फीस और मुआवजा नहीं लेता, ठीक, तुम उसको मान लो तो मेरा कोई नफा नहीं और ना मानो तो मेरा कोई नुकसान नहीं, ठीक है, मैंने तो अपना काम कर दिया ना जैसे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था, ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो आप इन लोगों को ऐसे बता दीजिए। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा फिक्र और परवाह थी लोगों की कि वो इस बात को मानेंगे तब ही इनका भला होगा वरना इनका नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने सर से उतार देने की सोच के साथ नहीं करते थे ये वाला काम, वो तो अल्लाह ताला बतौर शेख के नबी अलैहिस्सलाम को दिलासे देते थे कि आप अपने आप को हलकान न करें, आप अपने आप को बीमार न कर लें उन लोगों की फिक्र के पीछे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो रहमतुल आलमीन जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था वो होने का भी हक अदा करते रहते थे, यानी फिक्र में लगे रहते थे। ठीक है, तो दावत देने वाला जो होता है ना वो बगैर फिक्र के उसकी दावत दावत नहीं होती। ठीक, वो तो बस फिर यानी कोई वबाल है जो उसने अपने सर से उतार दिया कि भाई मैसेज आगे पहुंचा दिया बगैर फिक्र के, बगैर खैर पाई के। इसी वजह से जो है ना वो दावत देने वाले को फिक्र होना ये शर्त है दावत के, इसके बगैर दावत दावत हो ही नहीं सकती। लेकिन ये फिक्र कैसे पैदा होगी, ये फिक्र कैसे पैदा होगी दावत देने वाले के दिल में, ये फिक्र कैसे पैदा होगी? चलें अगर आपसे पूछें तो क्या ख्याल है, दावत देने वाले के दिल में ये फिक्र कैसे पैदा होगी कि अगर मेरी दावत पर इन्होंने लबैक नहीं कहा तो ये बर्बाद हो जाएंगे? इल्म हासिल करके पैदा होगी। ठीक है, वैसे आपकी बात को गलत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे तो समझ में आ गई, पता नहीं किसी और की ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी समझ में आ गई, तो आप कुछ थोड़ा सा और इसको अगर एलैबोरेट कर। इंतहा से ज्यादा मोहब्बत, इंतहा से ज्यादा मोहब्बत, अच्छा इससे जो है वो ये फिक्र पैदा हो। अच्छा, अगर आपको अपने बच्चे से इंतहा से ज्यादा मोहब्बत है, ठीक है ना, बच्चे से इंतहा ज्यादा मोहब्बत पहले से है आप, और फिर आप जो है वो बच्चे को एक टॉय ला के देते हैं और उससे कहते हैं कि आप इस टॉय से खेलें, लेकिन वो खेलना नहीं चाहता, ठीक है, तो आपको क्या फिक्र हो जाएगी कि वो मेरे टॉय से नहीं खेल रहा? हालांकि आपको मोहब्बत तो है उससे, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन वो आपकी लाइफ में टॉय से नहीं खेल रहा, तो आपको फिर बहुत फिक्र हो जाएगी क्या उस इसके बारे में? अगर वो उनके खैर ख्वाही की सोच ले कर दावत दे रही हूं, उनकी खैर ख्वाही की सोच लेकर दावत दे रही हूं, तो फिर उनके बारे में फिक्र होगी। ठीक है, ये भी बात सही है, जब उसकी अहमियत होगी तो फिक्र होगी। हाँ, ये बात ज्यादा सही है, जब दावत देने वालों को इस चीज का यकीन हो जाए कि मैं जिसकी दावत दे रहा हूं उसके अलावा निजात किसी और चीज में है ही नहीं, मैं जिस चीज की दावत इन लोगों को दे रहा हूं इनके लिए निजात इसके अलावा और किसी रास्ते में है ही नहीं, इसके बगैर ये बर्बाद हो जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, बस इनके बचने का यही एक रास्ता है जिस रास्ते की तरफ मैं उनको बुला रहा हूं, ठीक है, तब फिक्र पैदा होती है। जैसे बच्चे के बारे के लिए आपने टॉय ला के दिया ना, तो बच्चे से मोहब्बत तो आपको बहुत है, बड़ी खैरख्वाही भी है, लेकिन आपको भी ये पता है कि यार ये टॉय जो है ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगर इस टॉय से बच्चा खेलेगा तो अच्छी बात है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मजा आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी खेलेगा तो मर को थोड़ी जाएगा, बर्बाद को थोड़ी हो जाएगा, मेरे टॉय से अगर नहीं खेलेगा तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे टॉय से खेल लेगा तो भी खुशी उसको थोड़ी बहुत मिल जाएगी, कम से कम मौत तो नहीं आएगी ना उसको मेरे टॉय से ना खेलने से और दूसरे टॉय से खेलने से, इसको मौत तो नहीं आ जाएगी ना। यही मामला दीन की दावत का है, ठीक है, कि सबसे पहले जो अपने ऊपर ईमान लाना है, अपने ऊपर ईमान लाना यानी अपनी दावत पर ईमान लाना, वो सबसे पहले दाई को खुद करना होता है, दाई का खुद ईमान हो कि जिस चीज की तरफ मैं दावत दे रहा हूं यही हक है, इसके अलावा हक है ही नहीं, इसके अलावा निजात का रास्ता है ही नहीं, इसके अलावा कामयाबी का रास्ता है ही नहीं, और सिर्फ नाकामी के रास्ते हैं इसके अलावा, ठीक है, तब जो है वो जिससे मोहब्बत होती है ना फिर उसके बारे में फिक्र, उसके लिए फिक्र भी पैदा होती है, वरना मोहब्बत तो है लेकिन फिक्र पैदा नहीं हो रही, जिस तरह बच्चे से मोहब्बत तो है लेकिन फिक्र पैदा नहीं हो रही, ठीक है ना, क्योंकि मेरे टॉय से नहीं खेलेगा तो किसी और टॉय से खेलेगा। अच्छा, अगर जो है वो दीन इस्लाम पे नहीं चलेगा। तो बहुत सारे बड़े अखलाकियात के और भी बहुत सारे जो है वो दुनिया के अंदर तरीके मौजूद हैं, और भी जो है वो ह्यूमैनिटी भी तो एक बड़ा अच्छा सा रिलीजन है, ह्यूमैनिटी वाले रिलीजन को फॉलो कर लेगा, ठीक है। लेकिन नहीं, ठीक है नहीं, बस यही एक रिलीजन। लेकिन इस रिलीजन में भी क्या कि जैसी मैं नमाज पढ़ती हूँ इमाम अबू हनीफा के तरीके से, अगर इमाम अबू हनीफा के तरीके से नमाज नहीं पढ़ेगी तो बर्बाद हो जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं, उसूल दीन के जो उसूल हैं, ठीक है ना, उनके बारे में ऐसा 100% कन्विंस होना कि दीन के जो उसूल हैं उन्हीं में निजात है, उनके अलावा किसी चीज में निजात नहीं है। फुरुआत की बात नहीं हो रही भाई, अगर इमाम अबू हनीफा के रास्ते से नमाज नहीं पढ़ेगी, इमाम शाफी के बताया हुआ जो हदीस जो जो यानी वो भी सुन्नत तरीका ही है, ये भी सुन्नत तरीका ही है, तो भाई अगर इस तरीके से सुन्नत पे अमल नहीं करेगी तो उस तरीके से सुन्नत पे अमल कर लेगी, ये मसला नहीं है। फुरुआत का मसला नहीं है, उसूल का मसला है। तो उसूल के बारे में दाई का ये नजरिया होना चाहिए, तब फिक्र पैदा हो, ठीक है। बिल्कुल सही। अब थोड़े मैसेज पढ़ लेने जाके तबलीग जमात वाले अपने काम को ही निजात का रास्ता बताते हैं, ठीक है। तो जैसे तो भाई अपने काम को से मुराद दीन, ठीक है ना, वो एक वो फुरूई रास्ता को अगर वो निजात का रास्ता बनाने चुके हैं, जैसे मैं कहूँ नक्शबंदी कि भाई जब तक जो है ना वो 6 लताइफ के ऊपर आप इस तरीके से 7 लताइफ पे मुराकमा नहीं करेंगे तो आप को निजात निजात नहीं मिलेगी, ठीक है। चिश्ती सिलसिले के मशाइख के जो मुराकबे हैं उनसे निजात विजात कोई नहीं मिलने वाली, सिर्फ नक्शबंदी सिलसिले के मुराकबे से निजात मिलने वाली है, तो भाई ये सही नहीं है, ठीक है भाई। उसूल की बात करें ना, उसूल अगर तबलीग जमात वाले उसूल की बात करें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नक्शबंदी उसूल की बात करें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर जो है वो तफसीलात की बात करें कि नहीं मेरी तफसील या मेरे मशायख वाली तफसील ही के मुताबिक होगा तो फिर निजात मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, तो ये फिर एक्सट्रीमिज्म हो जाता है, और दूसरी फिर ये बेवकूफी की बात भी होती है, जहालत की बात भी होती है। अगर मैं नक्शबंदी सिलसिले के बारे में ऐसी बात करना शुरू करूँगा तो जहालत ही कहलाएगी फिर वो। बहरहाल जिस चीज की दावत दे रहे हैं उसकी अहमियत खुद अपने दिल में भी बहुत हो, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये फरमाया कि यानी मैं तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए जो हिदायत तुम्हें दे रहा हूं इस पर मैं तुमसे कोई फीस और मुआवजा नहीं लेता, तुम उसको मान लो तो मेरा कोई नफा नहीं है और ना मानो तो कोई मेरा नुकसान नहीं है, ठीक है। यानी ये अल्लाह कह रहे हैं कि उनको ये बता दो, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम भरपूर फिक्र के साथ ये काम करते थे। ये तो तमाम जहान वालों के लोगों के लिए नसीहत और खैर ख्वाही का पैगाम है, तालीम और तबलीग पर कोई मुआवजा ना लेना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में हमेशा मुश्तरक चला आया है, और तबलीग के मुअस्सर होने में इसका बड़ा दखल है। क्या मतलब? तबलीग का असर होने में इसका बड़ा दखल, ठीक है। तो ऐसी बात है, ये तो आपके जहन में भी बिल्कुल क्लियर है पहले से ही कि भाई ये जो तबलीगी मवाइज होते हैं, तबलीगी जो है वो काम होता है, तो इसमें तो मुआवजे का तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, ठीक है। लेकिन ये उम्मीद है कि आपको याद होगा कि जब हम तर्जुमे में ये वाली बात पढ़ रहे थे तो उस वक्त ये तफसील से बात हुई थी कि उलमाए कराम जो मदारिस में पढ़ाते हैं या बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने वाले कारी हजरात होते हैं उन्होंने मुआवजा क्यों सेट किया हुआ है, उसकी वजह यही थी कि चूंकि हम उनका जो है वो जो सोसाइटी है, जो मुसलमान मुआशरा है, उस मुआशरे ने उनका बेड़ा नहीं उठाया हुआ, इस वजह से मुआवजा जो है वो मजबूरन उनको सेट करना पड़ता है, मजबूरन, ठीक है। तो मुसलमान मुआशरा अगर बेड़ा उठा ले तो फिर मुआवजे की ना जरूरत पड़ेगी और मुआवजे की बात ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह से कि यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और लेबोरेटरीज, ठीक है, उनका बेड़ा जो है वो हुकूमत ने उठाया हुआ होता है, और जहां पे हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही लल्लू पंजू होती है वहां पे जो है वो सोसाइटी ने उठाया हुआ होता है या जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस ने उठाया हुआ होता है, ठीक है। तो अब ये बात तो पहले हो चुकी, यहां पर जो हजरत ने बात करी है ना ये भी बहुत अहम है कि तबलीग के मुअस्सर होने में इसका बड़ा दखल है, ठीक है ना। तो अब जो मशाइख तबलीग का काम करते हैं या तबलीग जमात वाले तबलीग का काम करते हैं तो वो तो बगैर मुआवजे के होता ही है, है ना, हदीये मिल जाना तो मुआवजा नहीं होता ना, वो तो पहले से तयशुदा तनख्वाह को मुआवजा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये तालीम का काम है और कुरान पढ़ाने का काम है, इसमें तो मुआवजा है ना, ठीक है, तो इसका भी मुअस्सर होना मुआवजे के बगैर, तो अगर मुआवजा दे करके ये वाला काम किया जा रहा है, तो फिर क्या इसका फिर फ्लिप साइड क्या निकला कि उसका असर जो है ना वो फिर कम होगा, उतना असर नहीं होगा, उतना फायदा नहीं होगा कि जब उसके अंदर मुआवजा इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अगरचे के मदरसे के उलमा की तनख्वाह जो है ना वो फिर इसमें एग्जैक्टली नहीं अप्लाई होती है, क्योंकि वो ले तो रहे होते हैं मुआवजा, लेकिन वो मुआवजा भी जो है ना वो एक्चुअली जो मदरसे मदारिस हमारे मदारिस अरबिया, अल्लाह ताला हमारे अकाबरीन को जजाए खैर अता फरमाए, उन्होंने ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला की तौफीक से बनाया कि जिसके अंदर ये डायरेक्ट मुआवजे का सिलसिला ही नहीं रखा, ठीक है, कि जो है वो जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके अम्मा अब्बा से पैसे ले रहे हैं, ठीक है। दीनी उलूम जो पढ़ाए जाते हैं ना मदारिस के अंदर, वहां भी ये सिलसिला ही नहीं है, हालांकि उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन ऐसे नहीं कि जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके अब्बा हुजूर आके तनख्वाह दे रहे हैं या वो बच्चा खुद तनख्वाह दे रहा है, बल्कि क्या निजाम रखा, चंदे के जरिए से, ठीक है, चंदे के जरिए से कि सोसाइटी ही के ऊपर बोझ डाल दिया। बेशक सोसाइटी खुद तैयार ना भी हो, फिर भी होता ना, बंदा बंदा खुद तो नहीं चाहता देना, लेकिन जब कोई सर पे आ जाए लेने के लिए तो अब जो है वो शर्म की वजह से लिहाज की वजह से दे ही देते हैं, ठीक है ना, अगर से के कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन एक शर्म लिहाज भी तो होता है ना, तो इस वजह से सोसाइटी जो है ना वो दे देती है, या कुछ लोग जो है वो माशाल्लाह अपनी मोहब्बत से भी दे देते हैं, ठीक है। तो अब वो उस बच्चे के वालिदैन नहीं होते जो के चंदा दे रहे हैं, बल्कि वो सोसाइटी वाले होते हैं, तो एक तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे का भी फायदा ही हो गया, अगरचे कि उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, लेकिन हो गया, बिल्कुल ही फायदे से फारिग नहीं रह गए, ठीक है। तो इस वजह से मदारिस के अंदर जो सिलसिला ये चंदे वाला जो चल रहा है ना, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी खैर है, ये बहुत बड़ी खैर है। और जो बेवकूफ होते हैं, जाहिर है लॉर्ड मुकाले के या तो तालीम याफ्ता होते हैं, वो इसको बुरा समझते हैं, चंदा क्यों करते हैं, उनको समझ ही नहीं है इस बात की कि भाई इसमें कितना खैर है, या तो बनाओ ना तुम इस्लामी निजाम, बनाओ ना तुम हुकूमत, क्यों नहीं बनाते तुम लोग, है ना, उलमा के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हो कि वो हुकूमत बनाए, तुम आवाम हो, तुम उलमा की बात मानो, तुम दीन को सीखो, तुम दीन के मुताबिक अमल करो, तुम दीन को जो है वो अपने मुआशरे में लागू करो, हुकूमत बन जाएगी भाई, अल्लाह ताला बना देंगे हुकूमत, वो तुमने करना नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें वो तो भाई अगर तुम्हें चंदा इतना ही बुरा लगता है तो तुम हुकूमत बनाओ फिर किसी तरीके से, और फिर जो है वो हुकूमत जो है वो इनका जो है वो करेगी सारा का सारा इंतजाम, ठीक है। पहले जो है वो जब इस्लामी हुकूमत तो खत्म हो गई थी मुसलमानों में, लेकिन मुसलमानों की फिर भी हुकूमत थी, ठीक है, तो उस वक्त क्या निजाम होता था मदारिस को चलाने का, उस वक्त जो है वो वक्फ का निजाम होता, वक्फ का, ठीक है, औकाफ का निजाम जिसको कहते हैं। तो इसके फिर मल्टीपल निजाम बन गए ना, यानी मदारिस का जो सिलसिला है, दीनी उलूम की हिफाजत का सिलसिला और पढ़ने पढ़ाने और आगे चलाने का सिलसिला है, इसके फिर बहुत सारे मुख्तलिफ शक्लें रही हैं दीन के अंदर। सबसे पहली शक्ल क्या थी कि नबी अलैहिस्सलाम और जो मुखय्यर सहाबा होते थे, ठीक है, वो इसका निजाम चलाते थे, वो खाने को देते थे, वो जो है वो रकमें देते थे, ठीक है। तो ये एक नबी अलैहिस्सलाम की जो रियासत मदीना थी, हकीकी रियासत मदीना, दज्जाली रियासत मदीना नहीं, हकीकी रियासत मदीना जो थी, तो उसमें फिर ऐसे कि जो अमीर सल्तनत थे वो भी गरीब, जो आता था वो आगे दे देते दे थे, ठीक है ना, और जो साथ मदद करने वाले थे वो भी जो है वो देते रहते थे। इस तरह से उलमा का यानी असहाबे सुफ्फा जो उलमा थे दीन के पहले, उनका सिलसिला चलता रहता था। फिर जो है वो हुकूमत इस्टैब्लिश हो गई सल्तनत उमविया के जमाने, बल्कि इवन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में ही सिस्टम्स इस्टैब्लिश हो गए, तो एक सिस्टमैटिक हुकूमत कायम हो गई उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में इतना नहीं हुआ, और नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में तो बहुत ही यानी इनफॉर्मल किस्म का एक सिलसिला था, ठीक है। सिस्टम्स बनने शुरू हुए उमर अतानी के जमाने में, और ये स्ट्रांग होते गए उस्मान अतानी के जमाने में, और स्ट्रांग हो गए, और वही स्ट्रेंथ अली अतानी के जमाने में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट के साथ चलती रही। फिर सल्तनत उमविया का जमाना आया, उसमें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग सिस्टम्स हो गए। अब जो है वो हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया इसको, कि अब जो है वो हम करेंगे, इस तरह के जो भी तलबा होंगे उनका उनका इंतजाम, ठीक है। फिर हुकूमत, ये जो सारी हुकूमतें थी उमर अदनान और उनके बाद के लेकर, ये इस्लामी हुकूमतें होती, ठीक है। फिर इस्लामी हुकूमतों में से इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ, इस्लाम, ठीक है, इस्लाम कम होना शुरू हुआ, लेकिन दीन से खारिज नहीं हुए वो, काफिर नहीं हुए वो। इस वजह से फिर वो मुसलमान रहे, अगरचे के इस्लाम का निजाम जो है वो कम होना शुरू हो गया। तो उस वक्त फिर औकाफ का सिलसिला, ठीक है, औकाफ का सिलसिला कि बस कोई चीज प्रॉपर्टी जो है ना वो मदरसे के नाम वक्फ हो गई है, अब उस प्रॉपर्टी के किराए से या उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो जरात वगैरह होगी तो उससे जो आमदनी होगी वो आमदनी जो है वो फिर मदारिस को सपोर्ट करती रहेगी। ये औकाफ का सिलसिला जो है ये आखिर तक जारी रहा, जब तक के यूरोपियंस ने टेक ओवर नहीं कर लिया, उस वक्त तक ये औकाफ का सिलसिला जारी रहा। इन्होंने क्या क्या लिख दिया मैं जरा पढ़ लूं। व्हाइल वी सी दैट किड्स दैट रीड कुरान विद कारी साहब हु कम टू देयर होम एंड आर पेड बाय द पेरेंट्स, द किड्स एंड पेरेंट्स यूजुअली डोंट हैव द सेम कदर ऑफ द कारी साहब एंड नॉलेज बीइंग इम्पार्टेड, ठीक है, जबकि मदारिस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, जब कारी साहब के साथ ऐसा बहुत ज्यादा हो जाता है कि वो कदर नहीं होती, ठीक है। इन अ वे आवर मदारिस हैव कम फुल सर्कल दैट एट टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज रन ऑन डोनेशंस, ये पूरी तरतीब जो है ना वो पलट करके वापस उसी हाल पर आ गई है जैसे कि बिल्कुल इब्तदा में होती थी, ठीक है। तो हाँ, मदारिस का सिलसिला वैसे ही चंदे पे चल रहा है, जैसे कि असहाबे सुफा का सिलसिला चंदे पे चला चला करता था, लेकिन बहरहाल जाहिर है तब्दीलियां फिर भी है, लेकिन क्वालिटी डेफिनेटली काफी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, लेकिन प्रिंसिपली स्पीकिंग सिलसिला वही चल, लौट के वही वापस आ गई। तो ये औकाफ का सिलसिला जो है वो फिर जो कलोनियल पावर्स आई उन्होंने खत्म कर दिया ना, उन्होंने औकाफ को टेक ओवर कर लिया, ठीक है, उन्होंने जो है वो बिल्कुल ये सिलसिला खत्म कर दिया। फिर वापस वही सिलसिला, ठीक है, चंदे के ऊपर, चंदे के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन भाई जो असर होता है ना तो वो असर कैसे होगा जब जो है ना वो सही मानों में दिलो जान से सोसाइटी जो है ना वो इस काम को टेकअप करेगी, ठीक है, कि भाई वो बिल्कुल इस तरफ से वो बिल्कुल यानी जो 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 कुरान पढ़ाने वाले, जो दीन पढ़ाने वाले, तफसीर पढ़ाने वाले और फतवा देने वाले, वो बिल्कुल इन चीजों से बेफिक्र हो जाए और उनकी सारी फिक्रें जो है ना वो इसी काम के ऊपर लग जाए जो वो कर रहे हैं। जैसे कि एक रिसर्च साइंटिस्ट की सारी फिक्र जो होती है ना वो लगी होती है अपने मादे के ऊपर रिसर्च करने, ठीक है, मादे की खिदमत करने, उसकी सारी फिक्रें लगी हुई होती हैं, वो बेफिक्र होता है अपने बिल्स से और अपने जो है वो दूसरे मसाइल से, ठीक है। तो असल असल जो है ना फिर जब ही इन्होंने जो इतनी तरक्की करी ना, हम कहते हैं जी इन्होंने बड़ी तरक्की कर ली, उन्होंने ये बना लिया, उन्होंने वो बना लिया, तो भाई उनके रिसर्च साइंसदानों ने इसके ऊपर मेहनत करी है तो इस वजह से उन्होंने तरक्की कर ली। आपने जो है वो रूहानी तरक्की नहीं करी, आप जो है वो अल्लाह ताला से फायदा उठाने वाले नहीं बने क्योंकि आपने इसकी कदर ही नहीं करी, वरना आपकी जो तरक्की होती वो मादी तरक्की वालों से तो बहुत ज्यादा बड़ी तरक्की होती है ना, क्योंकि आपकी तरक्की तो अल्लाह के निजाम की तरक्की थी, आपकी तरक्की तो जो इस पूरे मादी दुनिया के बनाने वाला है और चलाने वाला है उसके कनेक्शन से आपकी तरक्की होनी थी। तो आपकी तरक्की ज्यादा बड़ी तरक्की होती या उनकी तरक्की ज्यादा बड़ी तरक्की होनी थी जो उन्होंने अब कर ली है, लेकिन हमने नहीं किया इस तरफ फोकस, भुगत रहे हैं। अच्छा, ह्यूमन वेलफेयर वाले भी तो चंदा लेते हैं, उनको खूब दिया भी जाता है, उनको अच्छा भी समझा जाता है, इस पर एतराज क्यों नहीं किया जाता? इसलिए कि दीन को ह्यूमन वेलफेयर की चीज समझा ही नहीं जाता। इसको भी अगर ह्यूमन वेलफेयर की चीज समझ लेना तो इधर भी जो है ना फिर खूब चंदा दें, खूब जो है वो उसको सपोर्ट करें, बल्कि अपने बच्चे भी दें, अपनी औलादे भी दें यहाँ पर, ठीक ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस चीज की अहमियत को समझते हैं। अच्छा, टाइम चूंकि क्लास का खत्म हो गया, तो आगे के 2 पेज मजीद रह गए इन आयात के, वो इंशाल्लाह अगली क्लासों में पढ़ेंगे। कोई मैसेजेस मुझसे रह गए हो तो बहुत माजरत, क्योंकि माशाल्लाह काफी उन्होंने जवाब दिए थे, सबके जवाब आज इस पढ़ नहीं सका। क्योंकि कोई सवाल तो नहीं है, उन्होंने एक ऊपर सवाल किया था, सोच नहीं होता, सोच होता है, सोच और फिक्री गुनाह से कैसे बचा जाए, सोच की गंदगी, क्या कहते हैं हमारे मशायख के यहाँ एक जुमला मशहूर है, फिक्र की गंदगी जिक्र से दूर होती, फिक्र की गंदगी जिक्र से दूर होती है। ठीक है, तो अब जिक्र जो है ना, वो शेख बताता है कि मुझे कौन सा वाला जिक्र करना है, तो शेख से पूछे कौन सा वाला जिक्र करना है, और शेख जो है वो आपको बताए चले आ रहे हैं, मैं सरनी खाना शुरू हो जाइएगा। ठीक है, कुरान को समझें, कुरान को सीखें, और दरस कुरान को गौर से सुने, ठीक है, और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, इससे फिक्र की गंदगी आपकी दूर हो जाएगी। कोई अलग से कोई जादू टोने वाला आपको मुराकबा मैं नहीं बताने वाला, बिल्कुल। ठीक है, ये है जिक्र। ठीक है, इल्म, इस वक्त इल्म जो है ना वो असल जिक्र है हमारा, फिर जिसका इल्म सही हो जाएगा वो फिर आगे दूसरे मुराकबे, तो दूसरे काम फिर वो उसके बाद करेगा, पहले जो है वो इल्म, जिसका इल्म ही ठीक ना हो ना, वो मुराकबे से उसको कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इल्म ठीक करें, अपना इल्म ठीक करें। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, वाह अलहमदुल्ला।